ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद अध्याय एक और श्लोक संख्या 14। जदवाची तंत्याम गुणकर्मदामभि सुदुस्तरे वत्स वयम् सुयोजितः सर्वे वहामो बलिमिश्राय प्रोता नसीव दीपदे चतुष्पदः। जद्वाचि तन्तां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरैवस्स वयं सुयोजितः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः। जद्वाचि तन्तां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरैवस्स वयं सुयोजितः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः। जद्वाचि तन्तां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरैवस्स वयं सुयोजितः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य समय संक्षेप है। जत जिसका वाची वैदिक आदेश के रूप में तंताम लंबी रस्सी से गुण गुण कर्म तथा कर्म की दाम भी रस्सियों से सुदुस्तरय ढाल पाना अत्यंत कठिन है। वत्स हे बालक वयम हम सुयोजितः लगे हुए हैं सर्वे सभी वहामः पालन करते हैं बलिम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी आज्ञाओं को ईश्वराय भगवान को प्रोतः बद्ध होकर नोसी नाक में इव सदृश द्विपदे दो पैर वाले हाँकने वालों की दो पैर वाले हाँकने वालों हाँकने वाले वाले को चतुःपद चौपाया बेल। शिल प्रभुपद के द्वारा अनुवाद। हे बालक हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बांधे हुए हैं। हम सभी अपने गुणों गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बांधे हुए हैं। इन विभागों में बाँच पाना कठिन है क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य का पालन उन बेलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में तन्तम गुणकर्म दाम भी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें प्रकृति के गुणों के साथ अपने संसर्ग के अनुसार शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के चार विभाग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित है, किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद है। क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए, किंतु अन्य का कथन है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदल सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि इसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के चार विभाग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में इस मत की पुष्टि की है। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के लक्षणों वाला हो तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और इसी प्रकार यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली वैज्ञानिक है, अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देश के अनुसार स्वीकार कर ले तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। जब तक मानव समाज इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं हो जाता वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेन परह पुमान विष्णु आराधते पंथा नान्य तत्व सुकारणम कारणम। भगवान विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्य के समुचित पालन से की जाती है। भगवान की प्रसन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहे। पूरा मनुष्य समाज भगवान विष्णु की आराधना के निमित्त है, किंतु इस समय मानव समाज को यह पता नहीं है कि जीवन का यही परम ध्येय या सिद्धि है। इसीलिए मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा न करके पदार्थ की पूजा करने की शिक्षा दी जाने लगी है। आधुनिक समाज के निर्देश अनुसार मनुष्य सोचते हैं कि ये पदार्थ को गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, स्वयंचालित वाहन इत्यादि में परिणत करके सभ्यता को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। ऐसी सभ्यता निश्चय ही भौतिकतावादी है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को जीवन का लक्ष्य का पता नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो विष्णु को प्राप्त करना है, किंतु लोग विष्णु तक न पहुंचकर भौतिक शक्ति के बाह्य रूप से मोहित हो जाते हैं। अतः भौतिक प्रगति अंधी होती है और इसके जननायक भी अंधे होते हैं। ये अपने अनुजाइयों को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। अतः सबसे अच्छा यही है कि वेदों की आज्ञा मानी जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में जतवाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वो यह जाने कि वो ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र, और इसी के अनुसार उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। तभी उसका जीवन कृतार्थ है। अन्यथा सारे मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। यदि मानव समाज वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित हो जाए और वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो मनुष्य का जीवन चाहे वो जिस पद पर हो सफल अर्थात कृतार्थ हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त होगा शूद्रों को नहीं। यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र हो दिव्य पद तक पहुँच जाएंगे। वेदों की आज्ञा भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। इस श्लोक में रस्सी से नथे हुए बेल का दृष्टांत दिया गया है जो हाँकने वाले के निर्देश अनुसार चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार यदि हम वेदों के निर्देश अनुसार चले तो हमारा जीवन पथ सुस्थिर हो। अन्यथा अपने सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशापूर्ण बन जाएगा। चूँकि इस समय लोग वेदों के निर्देश अनुसार नहीं चल रहे इसलिए इतनी अव्यवस्था है। अतः हमें चाहिए कि हम ब्रह्मा जी द्वारा प्रिय व्रत को दिए गए निर्देश को वास्तविक वैज्ञानिक निर्देश मानकर अपने जीवन को फलीभूत करें। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ज शास्त्रविधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगति। यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो दूर रही। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सुंदर है। तो यह ब्रह्मा जी प्रिय व्रत को उपदेश देते हुए कहे कि जिस प्रकार मनुष्य के आदेश अनुसार पशु चलते हैं इसी प्रकार ब्रह्मा कह रहे कि हम इंद्र चंद्र वरुण जो भी है सब उन्हीं के आदेश के अनुसार चल रहे हैं। ये है सिद्धांत ये है हम सब जो भी है भगवान के निर्देश अनुसार कार्य कर रहे हैं। अगर इस बात को हम लोग ध्यान से समझ जाए तो हम लोग निकुंज में प्रवेश कर जाएंगे। निकुंज लीला जो है जो ठाकुर जी हम पहले जो जीवन राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर जब तक हम देहाभिमान में रहेंगे जब तक हमारा कर्तृत्व अभिमान रहेगा तब तक उस लीला का भले गान कर ले किंतु उस लीला में पहुँच नहीं पाएंगे। ये जो शरीर में हम लोग तिलक लगाते शरीर में लगाते हैं ना पंचभौतिक शरीर में तिलक धारण करते किंतु यथार्थ है स्वरूप में तिलक धारण किया जाते हैं। स्वरूप जो है हमारे जो स्वरूप है स्वरूप का ज्ञान जब हो जाएगा तब काम विकार नष्ट हो जाएगा। काम विकार होता है शरीर में पंचभौतिक शरीरों में काम क्रोध लोभ मोह जो भी विकार है ये किस में होता है ये पंचभौतिक शरीरों में है। जब स्वरूप ज्ञान हो जाएगा स्वरूप ज्ञान जो मैं कृष्ण का दास हूँ यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाएगा तब ये जो काम क्रोध का जो विकार है ये विकार समूल नष्ट हो जाएगा इसका कोई जड़ तक नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहे कि वर्णाश्रम धर्म का हम लोग का पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम चारवता पुरुष है न परपमान हाँ विष्णु आराध्यते पंच जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। बिना जीवन का लक्ष्य नहीं है तो ठीक स्थान पर पहुँच नहीं पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कोई जौहरी के दुकान में गए हाँ और सब छूने लगे एक ए गले के हार कितने की है ए जो अंगूठी कितने की है सब दाम पूछ रहे तो आखिरी में जो जौहरी है पूछने लगे आपको क्या लेना है तो जो लेने वाला जो गया था खरीदने के लिए गया था वो कहे मैं देख रहा हूँ मुझे लेना नहीं है आपके जो सामान यहाँ है मुझे जस्ट देख रहा हूँ ये नेकलेस है ये कितनी कीमती है ये कितना मतलब सब कुछ दाम पूछ रहे हैं मुझे कुछ लेना नहीं है। इसी प्रकार अगर हम लोग इसी में आकर अगर हमारा लक्ष्य ठीक ना रहे तो हम परम पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन का लक्ष्य जो श्याम सुंदर की राधा श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम की जो प्रीति प्रेम एक तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे जरूरी ये है कि हमारा लक्ष्य स्थिर हो जाए। लक्ष्य स्थिर होगा कैसे? अभी लक्ष्य स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? ना देहाभिमान का, देहाभिमान के कारण हम शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, हमारे शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। खाए बिना शरीर रहेगा नहीं, हाँ जब भोजन ना किया जाए ये शरीर रहेगा नहीं। बा शरीर के ऊपर केंद्रित है जीवन का लक्ष्य, शरीर पर ही केंद्रित है, शरीर के ऊपर चिंता नहीं करते। 9 बजे प्रसाद नहीं मिलेगा तो वो मन दुखी हो जाएगा, हाँ क्योंकि 9 बजे प्रसाद नहीं मिला। जब शरीर के धारणा से ऊपर उठ जाएंगे तब आपका ध्यान ही नहीं रहेगा कब मुझे प्रसाद लेना है, कब क्या करना है। हाँ शरीर के जब धारणा से मैं ऊपर उठ जाएंगे, जब रस, जब ठाकुर जी का रस, प्रेम रस आने लगेगा, तब आपको भोजन के प्रति ना भोजन ठीक लगेगा, ना शरीर का वस्त्र ठीक, अच्छा वस्त्र के प्रति ध्यान रहेगा, ना सोने का अच्छा व्यवस्था के ध्यान रहेगा, किसी प्रकार किसी वस्तु के प्रति ध्यान रहेगा। तो कहने का उद्देश्य ये है आज के श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यही विशेष, जीवन का लक्ष्य स्थिर होना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य स्थिर करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग स, मैंने 4 वर्ण और आश्रम का सृष्टि किया, किस लिए, किस कारण से, गुण एवं कर्म के अनुसार। तो सात्विक गुण के सात्विक जो सात्विक सात्विक गुण राजसिक गुण और तामसिक गुण, इसी प्रकार सात्विक कर्म राजसिक कर्म तामसिक कर्म। हाँ जो सात्विक गुण के हैं वो देव माने भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, भगवान के आराधना कर भगवान को जानने के लिए प्रयास करेंगे। रजोगुणी व्यक्ति अपना नाम जस प्रतिष्ठा के लिए पूजा आदि करेंगे, हाँ पूजा करेंगे किंतु अपना नाम जस प्रतिष्ठा के प्राप्ति के लिए। और तमोगुणी व्यक्ति वो तो दूसरे के नाश करने के लिए सोचेंगे, हाँ उनका पूजा पाठ किस लिए, दूसरे की हानि पहुँचाने के लिए, यह तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण। तो प्रभुपाद जी लिखे यहाँ वर्णाश्रम चारवता पुरुष ए न परह पुमान, पुमान प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य की वर्णाश्रम अनुसार जीवन जापन करें, इसी से विष्णु प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी कहना है। इसी बहुत मतलब महाप्रभु जब पूछा गया हे प्रभु, जब स्वरूप दामोदर पूछने लगे कि महाप्रभु पूछे क्या मैं कहना हमारे जारे तपत्र है, यह नहीं जाने कैमन हित है, हाँ साध्य साधन तत्व पूछते न जाने, कृपा करी कर राय कहता अपने, हे राय आप कृपा करके साध्य साधन संबंधे मुझे बताएं। तो पहले राय रमन जब पूछने लगे, राय रमन ने कहे कि वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ है, महाप्रभु बोले ये बाह्य है, इसमें कोई दम नहीं है, हाँ महाप्रभु उसको काट दिया वर्णाश्रम धर्म को। फिर कृष्ण कर्मार्पण, उसको महाप्रभु कहे कि नहीं ये हो बाह्य। फिर महाप्रभु कहे कि सर्वधर्म त्याग, राय रमन ने कहे सर्वधर्म त्याग करने से श्याम सुंदर की प्रेम प्रीति प्राप्त हो जाएगा, महाप्रभु ये वाह्य, सबको एक एक करके वाह्य करते गया। फिर कहे कि ज्ञान, हाँ ज्ञान सुन्न भक्ति, जब वहाँ तक पहुँचे तब महाप्रभु कहे यहो है आगे कह रहा है, हाँ ये हो सकते हैं प्रिया प्रीतम की प्रेम प्राप्ति करना संभव है, किंतु हे राय और कुछ आगे कहो। तब तो जब कहने लगे तो फिर एक एक सुख रस दास्य रस, महाप्रभु कहे यहो है आगे कहो, फिर सुख रस आगे कहो, फिर वात्सल्य रस आगे कहो, फिर मधुर रस, जाकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए, हाँ राय ये श्रृंगार रस जो है ये सबसे उत्तम रस है, महाप्रभु इसलिए आए उत्तम रस को देने के लिए, हमारे पास आज आए किस लिए, महाप्रभु उत्तम रस। उपासना 2 प्रकार की, एक सारस्य की उपासना, एक है मंत्र उपासना, जो एक हदवत उपासना, एक नदीवत उपासना। जैसे उपासना हम लोग जो कर रहे हैं ये नदीवत प्रवाह लीला चल रही है, हाँ इसको धीरे धीरे से जैसे दूर से कोई छवि ले कैमरा से, दूर से अगर फोटो खींचे दूर से ले तो सब आ जाएगा, हाँ पूरा हॉल आपको पूरा आ जाएगा, किंतु अगर क्लोज मतलब बहुत निकट से जूम इसको ये करे तो शुद्ध ये छवि आएगा। जो ह्रदवत है वो राधा श्याम सुंदर जो विस्तार की जो लीला है पालंग पर ठाकुर जी लीला विलास कर रहे उसी के लीला दर्शन होगा, किंतु जो दूरी से देखेंगे निकुंज और गोष्ठ सब आ जाएगा जो महाप्रभु की लीला उपासना है। एक है ह्रदवत उपासना और एक है ये थोड़ा सा जटिल पड़ेगा क्योंकि ये निकुंज उपासना की चर्चा है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि महाप्रभु बहुत उच्च रस की बात करी, हाँ निकुंज के रस जहाँ श्रृंगार रस की चर्चा उस रस की चर्चा की। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहने के उद्देश्य सिद्धांत को पुष्ट करना है, जब तक सिद्धांत पुष्ट नहीं होगा तब तक निकुंज में प्रवेश करने पर भी आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए महाप्रभु श्रील प्रभुपाद आज तात्पर्य में लिखते हैं जीवन का लक्ष्य स्थिर होना चाहिए और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य ठीक करना चाहिए। तो आज है हरियाली तीज। श्रील प्रभुपाद और एक सुंदर बातें लिखे, जो शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, जो लोग शास्त्र विधि को नहीं मानते हाँ कामाचार्य में लिप्त रहते हाँ काम कारतः न स सिद्धि अवाप्नोति, वो लोग सिद्धि की प्राप्त नहीं करते, सिद्धि प्राप्त नहीं करते। न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गति की, परम गति को भी प्राप्त नहीं करते और सुख भी नहीं प्राप्त करते। इसलिए शास्त्र वाणी स्वीकार करना है। एक स्थिति आ जाती है उस समय शास्त्र को पालन करना नहीं पड़ता है, वो शास्त्र अपना आप हृदयस्थ हो जाता है। एक समय आता है जो जिस समय जाने जिस स्थान में पहुँचने पर और तिलक आदि माने कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप होने लगता है। हाँ जैसे अगर आप 8 घंटा नाम जप करें तो आपका 16 घंटा नाम जप अपना आप हो जाएगा, अगर 16 घंटा नाम जप करें तो 24 घंटा नाम होने लगेगा, समझे। इसी प्रकार अगर हम जागृत में नाम जप हो रहा है तो पूरा जागृत में नाम हो रहा है तो सपना एवं सुसुप्त में भी नाम चलेगा। यही लक्ष्य अंतिम लक्ष्य ये है जो 24 घंटा नाम स्मरण हो 24, तब जाकर हमारा देहाभिमान नष्ट होगा। जब तक 24 घंटा भजन नहीं हो पाएगा तब तक देहाभिमान छोड़ेगा नहीं, और देहाभिमान है इस संसार चक्र में जो हम 84 लाख जोनियों में घूम रहे हैं, ये एकमात्र कारण है देहाभिमान, कर्तृत्व अभिमान, जिसमें मैं पना रह गया। ये मैं पना के मिटाने के लिए इतना उपासना सब हम लोग आज उपासना कर रहे हैं। उपासना की जाती है वासना के नाश के लिए, न कि वासना के वृद्धि के लिए। तो इसलिए हमें से हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा साधन विषय हो साध्य प्रभु हो, साध्य श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, और साधन क्या हो विषय, हाँ। और ये ना हो कि विषय साध्य हो गया और साधन भगवान हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आया, साध्य और साधन संबंध ध्यान रखना चाहिए कि हमारा साध्य है ठाकुर जी, साधन है सांसारिक विषय से लेकर विषय को लेकर साध्य प्राप्ति के लिए मैं उसको उपयोग कर सकते हैं। ये ना हो जाए कि हमारा साधन हमारा विषय की प्राप्ति के लिए भगवान को सामने खड़ा कर दिया कि हमारा विषय प्राप्ति करना है न कि भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य है। बात क्लियर, हाँ हमारा लक्ष्य होना चाहिए ठाकुर जी की प्रेम प्राप्ति, इसके लिए विषय की जरूरत है, धन संपत्ति जायगा जमीन जो भी है सब कुछ जरूरत है। हाँ अगर मैं सोचा कि नहीं मुझे इतना बड़ा फ्लैट हो जाए ये हो जाए वो हो जाए इसके लिए मैं उपासना कर रहा हूँ ब्रज धाम वास कर रहा हूँ तो बहुत समय लग जाएगा, इसमें लॉस नहीं है किंतु इसमें बहुत समय लग जाएगा प्रेम प्राप्ति के लिए। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए कि नहीं मुझे प्रेम प्राप्ति करना है तो वैराग्य, प्रेम प्राप्ति के लिए 4 साधन है। तो सबसे पहले लोभ चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए लोभ, दूसरा नंबर अनुगत्य, तीसरा नंबर अनुन्नता, अनुन्नता होना चाहिए अनन्न और किसी को नहीं, मैं ठाकुर जी की प्रेम प्राप्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सांसारिक भोग मुझे आवश्यकता नहीं। और चौथा है वैराग्य, ये जो मतलब सबसे हम लोग राग में है सांसारिक राग में है, तो अनुराग जहाँ जो राधा कृष्ण प्राणम और जुगल किशोर नित्य ध्यान तब होगा जब हम देहाभिमान से सांसारिक राग से जब हम मुक्त हो जाएंगे, जब तक सांसारिक राग बना रहेगा, शरीर संसार के प्रति संबंध बना रहेगा, तब तक ये आज झूलन लीला जो है ठीक दर्शन नहीं हो पाएगा। हम बाहर ही दर्शन कर रहे हैं, झूलन झूला दर्शन कर रहे, तो जब इसको आप देहाभिमान से मुक्त हो जाएंगे तब आप नित्य नित्य नव नवायमान झूलन आपका दर्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आज जेहेतु हरियाली तीज है, हरियाली तीज, तीज मतलब आनंद उत्सव, तीज शब्द का अर्थ क्या, आनंद उत्सव। तो हरा मतलब हरा, हाँ, जो वर्षा ऋतु से सब हरा हरा हो गया, हाँ, सब कुछ सुंदर हो गया। तो ठाकुर जी ब्रजवासियों ने सभी ऋतुओं का स्वागत किया, वर्षा ऋतु को स्वागत किया। वर्षा ऋतु जब आए सब हरा हरा हो गया, सुंदर सुंदर सब पशुओं को भोजन मिलने लगा, सब आनंद मुखरित। तो ठाकुर जी की इच्छा हुई कि मुझे ये करना है, आनंद उत्सव करना है, तो झूलन झूला का आनंद ले। तो एक बार क्या हुआ, बरसाना में श्रावण शुक्ल तृतीया, शुक्ल पक्ष तृतीया, एक बार क्या हुआ, तिथिया तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल तृतीया से लेकर पूर्णिमा तक रसवती श्रीमती राधारानी नंदा लाई जाते थे। उस समय नंदा नंदा गांव में जाकर प्रातः माने जाकर रसोई करके फिर वापस आ जाते थे, कहाँ, बरसाना में। तो बरसाना में आकर थोड़ा सा विश्राम करती थी, विश्राम करके फिर सूर्य पूजन के लिए कुछ मिष्ठान बनाती थी, सूर्य पूजन के लिए कुछ मिष्ठाई बनाकर फिर सोचते मुझे कुछ झूलन का आनंद लेना है। तत्पश्चात सूर्य पूजा के लिए मिष्ठान आदि प्रस्तुत कर वेशभूषा के अंत में सखियों के साथ झूला झूलने के लिए बरसाने के नैरित कुन, बरसाने के नैरित कुन मतलब जो कामावन काम्यवन है और बरसाने के बीच में जो कदम खंडी है वहाँ झूलन लीला शुरू हुई। पहले प्रथम झूलन लीला कहाँ शुरू हुई, कदम खंडी, हाँ, ध्यान रखे, बहुत सुंदर लीला है। तो सूर्य पूजन के लिए तो नैरित कोण में स्थित कदम खंडी वन गमन की, वहाँ वृषभानु महाराज पहले से ही अति मनोरम रत्नमय हिंदोला प्रस्तुत कराकर रखे हुए थे, सुंदर सोने के सिंहासन बनाकर, कहाँ, कदम खंडी, कदम खंडी में वृषभानु बाबा क्या किए थे, सुंदर हिंदोला बना के रखे थे। उस दिव्य हिंदोला के आठों ओर स्वर्ण निर्मित रत्न खचित उति उच्च आठ स्तंभ शोभा पा रहे हैं, जिन पर स्वर्ण सूत्र से आबद्ध अरुण वर्ण के विचित्र चंद्रातप है, जिसके चारों ओर स्वर्ण सूत्र से ग्रंथित मणि मुक्ताओं के झालर, माने झोला, झोला का कितना सुंदर वर्णन है। आज से झोला सब जगह ब्रज में जहाँ जहाँ जाएंगे आप, आपको झोला दर्शन होगा, सभी मंदिरों में आज से झोला शुरू हो गया, हाँ, और झोला चलेगा कहाँ तक, पूर्णिमा तक। तो झोला का वर्णन करें, झोला कैसे ना सुंदर से बाबा ने बनाया था, क्या क्या उसमें है। तो मुक्ताओं के झालर तथा वस्त्र पत्र पुष्प निर्मित तोरण या वंदन वस्त्र सुशोभित है, जिस पर इसको सुनकर उस चित्र का दर्शन करना है, हाँ, इस लीला को श्रवण करके क्या, उस लीला का स्मरण करना, कैसे उस समय उस सभा कैसे थी, सुशोभित है, जिस पर भ्रमरों के समूह मधुलोभ के मधुलोभ से निपोतित हो रहे हैं। इस चांदवा के नीचे मध्य में दो जोड़ा मणिमय स्तंभ है, जिस पर अष्टदल पद्माकृति मणिमय हिंदोला स्वर्ण जंजीरों द्वारा निबद्ध होकर नाभि पर्यंत ऊंचा झुलाया हुआ है। इस हिंदोले के ऊपर अति आश्चर्यजनक चित्र विचित्र सुकोमल गद्दी या उपाधान तथा झूले में ही ऊपर विचित्र चंद्रातप मुक्त मालाओं के झालरों से समन्वित बंदनवार सुशोभित हो रहे हैं। इस हिंदोला मंडप के चारों ओर वृक्ष श्रेणियों पर रत्न निर्मित श्रेणीबद्ध असंख्य हिंदोला समूह परम शोभा का विस्तार कर रहे हैं। आकाश में मेघ ने सूर्य किरण को आच्छादित करके मंद मंद गर्जन करते हुए रिमझिम वर्षा होने लगी, वर्षा कर रहे हैं। मयूरगण सुंदर सुंदर आवाज कर रहे हैं, भ्रमरों जो है सुंदर सुंदर गुंजार रब से सुंदर जगह को मुखरित करके रखा है। फिर कोकिल कोकिलाओं के समूह कुहू कुहू ध्वनि के साथ गान कर रहे हैं, भ्रमर के झुंड सुमधुर गुंजार करते हुए चारों ओर उड़ रहे हैं। इस प्रकार की दिव्य शोभा के दर्शन से श्री राधारानी परम आनंद विभुर ललितादि सखियों के साथ कदम्ब मंडप स्थित रत्न वेदिका पर बैठकर प्रियतम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित चित्त से उनके आगमन पथ पर आंखें बिछाई हुई उनकी प्रतीक्षा कर रही है। वहाँ सब ललिता विशाखा सब पहुँच गए, कहाँ? कदम खंडे में। और कदम खंडे में पहुँच कर श्री कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रही है, हाँ, कि कब श्याम सुंदर आएंगे। और जब आए श्याम सुंदर आए, फिर ढूंढने लगे राधा जी कहाँ, राधा रानी कहाँ है, सखियों से पूछने लगे। तो सखियाँ कही कि हम लोग जानती नहीं है, कोई हम लोग जानते नहीं राधा रानी कहाँ है। तो वृंदा जी इंगित करेंगे कि वो कुंज में छिपी हुई है। तो वृंदा जी के अनुसार फिर राधा रानी एक निकुंज में जाकर छिप गई। इतने में ही श्री कृष्ण ललिता सखियों के निकट आकर राधा रानी को ना देखकर सखियों से पूछने लगे, हे सखियों, तुम्हारे सखी श्री राधा कहाँ? सखियाँ बोली, हम सब नहीं जानती। यह सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत उदास हो गए। श्री कृष्ण उदास देखकर वृंदा देवी ने कही कि आप उस कुंज में चले जाइए। तो राधा रानी कहाँ यह जानकर श्री कृष्ण की बड़ी प्रसन्नता हुई और उस कुंज में प्रवेश कर गए जहाँ श्री राधा रानी छिपी हुई थी। उभय अपराकृत कामरति के इसमें वहाँ जाकर ठाकुर जी लीला विलास करेंगे, हाँ, विलास करके फिर ललिता विशाखा जब सुंदर शोभा का दर्शन करेंगे कुंज में, दर्शन करके फिर दोनों को सिंहासन पर बैठाएंगे, हाँ। तो दिव्य विलास के पश्चात श्री राधा कृष्ण एक दूसरे के वेशभूषा सुसज्जित करके निकुंज के बाहर आकर रत्न वेदिका पर विराजमान हो गए। वृंदा देवी ने अपने परिचारिकों से, वृंदा देवी हमेशा जब भी ठाकुर जी लीला विलास करते सुंदर सुंदर मिष्टान्न फल जो कर फलों का रस सुंदर सुंदर बना के रख कर ठाकुर जी को पवाते थे और पवाकर फिर सब सखियों को बांट देती थी। परिचारियों से मिष्टान्न फल रस पेय तथा जो मिष्टान्न वर्षान से बनाकर प्रियतम के लिए लाया गया था वो सभी भोज्य और पेय पदार्थ श्री जुगल किशोर को, जुगल सरकार को पवाकर तांबुल अर्पण की एवं श्री जुगल का प्रसाद सभी सखियों को बांट दी। श्री कृष्ण प्रियतमा श्री राधारानी का हस्तकमल धारण कर, हाँ, श्री कृष्ण प्रियतमा श्री राधारानी का हस्तकमल धारण कर हिंदुला पर चढ़कर श्री श्यामा जी को अपने बाम भाग में लेकर कर्णिका पर बैठ गए। कर्णिका के चारों ओर अष्टदल पर ललितादि अष्ट सखियों बैठ गई, झूला में आठ सखियों भी बैठ गई। बिंदा जी जुगल श्री जुगल की आरती कर पुष्प वृष्टि की। हिंदुला के दोनों बगल में जमीन पर खड़ी होकर दो सखियाँ झोटा, हाँ, हिलाने लगे, हाँ, तो धक्का देकर आंदोलित करने लगी, अर्थात ललितादि सखियों सहित रसिक व श्री राधा कृष्ण को झूला झूलाने लगे। अन्यान्य सखी का नाना वाद्य यंत्र को बजाती हुई, अन्यान्य सखी क्या करने लगी, वाद्य यंत्र बजाती हुई मल्हार राग में। आजकल तो राग तो है नहीं, उसमें मल्हार राग, तापर दीपक राग, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मल्हार राग में तुरंत बारिश हो जाते हैं। ऐसे ऐसे राग हैं जो तुरंत पत्ता सूख जाते हैं, नया नया हरा हरा पत्ता बना देते हैं, ऐसे राग की इतनी महिमा है। तो सखियाँ मल्हार राग में गान करने लगी और भ्रमरों के समूह से श्री राधा कृष्ण के मुख कमल के सौरभ से आकृष्ट होकर आंदोलित झूले के साथ साथ उसके चारों ओर गुंजार करते हुए भ्रमण करने लगे। इस प्रकार कुछ समय तक झूलने के बाद श्री राधा रानी नीचे उतार कर फिर दो दो सखियाँ फिर श्याम सुंदर के पास में दो दो सखियाँ बैठ कर झूला झूलने का आनंद लिया, हाँ, राधा रानी उतर करके फिर दो दो सखियों के झूला में बैठा दिया, फिर सभी सखियों ने झूला का आनंद लिया। फिर उसके पश्चात ठाकुर जी अपने रूप को विस्तार करके सब सखियों से झूला झूला, क्योंकि वहाँ बहुत कदम खंडी में बहुत झूला लगा हुआ था, एक ही झूला नहीं, काफ़ी झूला लगा हुआ था। तो श्याम सुंदर ने क्या किया, सब सखियों के साथ अलग अलग रूप से झूला झूले। फिर ठाकुर जी ने क्या किया, राधा रानी के साथ मैंने विशेष रूप से फिर से झूला झूलने लगे। तो जब झूला झूलने तो सखियों ने जोर जोर से झूला झूलने लगे, जोर जोर से, हाँ। तो राधा रानी ऐसी तो बहुत सुकुमारी है, वो तो बहुत मतलब भयभीत हो गए, भयभीत होकर श्याम सुंदर को आलिंगन करने लगे। तो आलिंगन करते हुए सखियाँ बहुत प्रसन्न हुए। कि मतलब रसोखिया की इच्छा यही है कि राधा श्याम सुंदर मिलन हो, हाँ यही उनकी सारा दिन के यही चिंता कैसे दोनों को मिलाए। हाँ तो इस प्रकार से यह देखकर झूले के बेग को मंद करने के लिए कोई मंजरी झूले के निचले भाग को पकड़कर लटकती हुई उसके नीचे झूलने लगी, जिसमें झूले का बेग धीरे धीरे रुक गया। झूले का बेग स्थिर हो जाने पर श्री कृष्ण श्री प्रिया जी के साथ लिए झूला में नीचे उतारकर ललिता जी सखियों सहित कदम मंडप वाली रत्न वेदिका पर बैठे बैठे पर फिर बिंदा जी फिर कुछ पाएंगे, कुछ रस कुछ फल रस पाकर फिर आरती करके फिर पुष्पार्पण करके फिर इतने में ही वहाँ मुखरा है राधा रानी की नानी वहाँ पहुँच गए। तो बृंदा जी कहे कि राधा रानी कहे कि राधा कुंड में मिलेंगे, कृष्ण को लेकर बृंदा छिप गए अलग हो गए। फिर राधा रानी राधा कुंड से मिलने के लिए कहकर श्री कृष्ण साथ प्रस्थान कर गई। मुखरा ने श्री राधा रानी के पास जाकर बोली आकर बोली क्या आश्चर्य अब तक तुम सब यही बैठे हो, मुखरा ने नहीं देख पाए हाँ अब तक तो यही बैठे हो, समय अधिक हो रहा है, शीघ्र ही सूर्यकुंड जाकर के पुष्प चयन कर सूर्य पूजा करके आओ। मुखरा ने ये बात सुनकर मुखरा जी की ये बात सुनकर श्री राधा ने सखियों के साथ पूजा पकड़ने लेकर कहाँ पहुँचे सूर्यकुंड में पहुँच गए। हाँ सूर्यकुंड में पहुँच कर फिर तत्पश्चात समस्त लीलाएँ ये नित्यवत जो ये जो झूलन लीला है ये झूलन लीला के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा वैराग्य धारण करना पड़ेगा, संसार सुख से हटकर जब आप उस रस में डूब जाएंगे क्योंकि उस रस में डूब पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा भौतिक रस को, जब तक भौतिक रस को त्याग नहीं करेंगे तब उस लीला में प्रवेश नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं तो क्या होगा ये लोकवत लीला मन जैसे हम लोग जैसे लीला करते सांसारिक लीला ऐसे राधा श्याम सुंदर की लीला ऐसी मालूम होगा। अगर आपको लीला का आस्वादन करना है तो धीरे धीरे से त्यागना पड़ेगा, त्यागत शांति अनंतरम जब तक भौतिक विषय से वैराग्य ना हो तब तक प्रिया प्रीतम की जो रस है उस जो लीला सुख है उस समय आपको कोई सांसारिक कोई चिंतन ही नहीं हो पाएगा। जैसे लगे कि हर क्षण और इस रस को पाने के लिए एकमात्र साधन है आचार्य का कहना है कि निरंतर प्रभु का नाम हो, भले जपमाला में ना हो किंतु जीवा जैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के संक्षेप की लीला यही है कि कदम खंडी में ये लीला हुई, वृषभानु बाबा ने ये झूला का व्यवस्था किया और सुंदर वहाँ का जो झूला का वर्णन वहाँ की सुंदर परिवेश का वर्णन किया, कितना सुंदर परिवेश था, कोई गर्मी नहीं थी, रिमझिम वर्षा हो रही थी और सुंदर वातावरण कोमल शीतल वातावरण। हाँ क्योंकि ऐसे वातावरण ना तो प्रिया पे तुम कैसे लीला करेंगे, तो वहाँ का वातावरण का वर्णन इसको मन को वहाँ ले जाना है, कहने का उद्देश्य हम तो लीला सुन लिया, मन को धीरे धीरे से उसका चिंतन करना है, चिंतन ही भक्ति, जितना आपका चिंतन शुद्ध होगा उस लीला में प्रवेश हो जाएगा, जब तक चिंतन नहीं बन पाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, अब एक सुन लिया फिर काम हो गया। तो कहने का उद्देश्य ये है फिर वहाँ के जब राधा रानी किस प्रकार से भयभीत होकर श्याम सुंदर का आलिंगन फिर बृंदा जी का जो सुंदर सुंदर मिष्टान्न फल रस पावना इसका चिंतन को एक अंगों का चिंतन करते रहिए, धीरे धीरे से देखिए उसमें कितना रस आने लगेगा। हाँ जितना मन चित्त शुद्ध होगा इसलिए महाप्रभु कहे चेत दर्पण मार्जनम, जब चित्त दर्पण मार्जन हो जाएगा सीधा आपको उस लीला में उन्हें दिन मतलब प्रयास नहीं करना पड़ेगा अपना आप उस रहस्य का दर्शन होगा। तो इसलिए इस लीला के उच्च पोच पाने के लिए हम सबको क्या करना है ब्रजवास, हाँ संतों का संग और क्या करना है ब्रजवास संतों का संग और निरंतर भजन, हाँ अखंड भजन होना चाहिए, खंडित ना हो, प्रसाद पा रहे पानी पी रहे हरे कृष्ण जन जीवा पर चलता रहे, हाँ किसी को देख रहे हरे कृष्ण देख रहे, किसी को देख रहे उसका स्वरूप का ही देख रहे, पंचभौतिक शरीर का दर्शन नहीं हो रहा है, इतना आँख शुद्ध हो जाए। इसलिए निरंतर एक आचार्य रसिक महापुरुष ने लिखा है कि निरंतर कान में कृष्ण का श्रवण जीवा पर कृष्ण कथा वर्णन और आँखों में निरंतर प्रभु का ही दर्शन। भाले में तो इसके मैं एक छोटा सा कथा सुनाता हूँ। मैं हमारे जीवन का जितने भी यहाँ कहना उचित ना उचित मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सुंदर क्या करना है। जब मैं बाहर रहते थे, बाहर 10 साल बाहर रहे, तो वहाँ बहुत सुंदर जब बाहर रहे तो क्योंकि जागतिक दृश्य जो है, क्योंकि हमारा उस समय मलिन मन था, चित्त वृत्ति मलिन था, तो मलिन रहने के कारण दृष्टि अच्छी दृष्टि नहीं थी, दृष्टि कुछ खराब था। तो माता बहने के प्रति दृष्टि कभी कभी ऐसे चला जाता था कि धीरे धीरे से फिर रोक पाना भारी पड़ता था। फिर मैं उस समय एक संत का चिंतन करता था, उस संत कितना अच्छा नाम जप करते, 12 बजे तक 1 बजे तक नाम जप, माने भूखे रहकर भजन करते थे। तो उस भक्तों का मैं स्मरण करता था। उसका स्मरण से ये जो हमारा जो मन में जो मलिन चिंता ये हट जाता था, प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए भक्तों का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। अगर आप भक्त का स्मरण है रहे, क्योंकि हम श्याम सुंदर को ठीक से देखा नहीं, साथ में उनके प्रेमी भक्तों को मैंने देखा, ठीक कि ना, उनकी लीला विलास, उनका हाव भाव, उनका जो प्रेम, हम मुझे उतना ज्ञान नहीं है, किंतु उनके भक्तों कितना प्रेमी है, उनके पाने के लिए कितना व्याकुलता है, ये मैंने देखा है कि ना। जब मैं वो भक्तों का चिंतन करता था, वास्तविक एकदम हृदय इतना शीतल हो जाता था, मतलब कहने का उद्देश्य ये है कि हम सभी को भक्तों का स्मरण, भक्त का चिंतन करने से उनका जो भजन का छठा भाग हमारे अंदर आ जाएगा। अगर विषय पुरुष का चिंतन करेंगे, उसका पाप का छठा भाग आपको लग जाएगा, ये है मुश्किल। अगर आप राजनीतिक चर्चा सुनेंगे, किसी देश की हालचाल सुनेंगे, तो उसका जिस व्यक्ति का चिंतन करेंगे उसका छोटा भाग आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सत्पुरुष जैसे हमारा आचार्य के कथा, आचार्य के दर्शन करेंगे, उनकी लीला सुनेंगे, तो उनका भजन का छोटा भाग आपको मिल जाएगा। इसलिए रोज नित्य निरंतर जो नरोत्तम प्रार्थना है, इसको सुनना चाहिए, वास्तविक बहुत सुंदर लीला में प्रवेश हो जाएगा। और प्रेम भक्ति चंद्रिका 2 पैसा दाम, छोटा सा पुस्तिका है, 10-20 पेज का है। सुबह से हमें माताएं देखती है, जहाँ ये हम फूल पंखड़ी ये करते हैं, फूल का सेवा करती है सुबह सुबह, तो अष्टकम षड़ गोस्वामी अष्टकम ये लोग गाने लगते हैं, बहुत सुंदर है। वास्तविक यही चिंतन है। हाँ, एक दिन मैंने देखा तो एक्चुअली यही जीवन का लक्ष्य, किसी प्रकार से मन भगवान में लग जाए, एक क्षण व्यर्थ ना जाए। समय बहुत कम है, बहुत तेजी से जा रहे हैं, इस समय तो एक एक क्षण को भगवान में लगाना है। तो सुबह सुबह जो माताएं ठाकुर जी के लिए जो फूल की कोई सेवा करती है, तो उस समय बहुत सुंदर भजन, षड गोस्वामी अष्टकम, फिर धीरे धीरे से नरोत्तम प्रार्थना, एक एक भजन, कुछ ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करने से वास्तविक उस लीला का दर्शन हो जाएगा। धीरे धीरे से भौतिक विषय से थोड़ा सा बाँच कर चले और निरंतर भजन करें, संत का संग करें, ब्रज वास करें। ब्रज के रज जो है ये बहुत शक्तिशाली है। ब्रज रज रोज शरीर में, जैसे मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, रज तिलक घिस के उसे ब्रज रज मिला लेते हैं। हाँ, रज मिला के फिर तिलक करते हैं, क्योंकि रज सारा दिन शरीर में रहेगा। हाँ, तो इसी प्रकार अगर हम करते रहेंगे, धीरे धीरे से रज जब तक शरीर में रहेगा, तो धीरे धीरे से रजोगुण हट जाएगा। हम लोग रज का आजकल आदर नहीं करते, इसलिए इतनी दुर्दशा है। जब रज का आदर करने से आपका रजोगुण चला जाएगा, और रजोगुण चले जाने के बाद आपका देहाभिमान, रजोगुण आता है, देहाभिमान आता है रजोगुण के कारण। हाँ, जब हम देहाभिमान जो भोग रहे हैं, देहाभिमान की जो गलतियाँ हैं, तो इसका कारण रजोगुण, रजोगुण हट जाए तो देहाभिमान चला जाएगा, और देहाभिमान चले जाने के बाद ही तुरंत सुंदर लीला का ये झूला झूलन का जो दर्शन आपको साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो जाएगा। शिल प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।